समय पर समय जब हम सखियां आपस में मिलती हैं, तो बाप दादा के चरित्रों को दोहराते हुए कई ऐसी बातें आती थीं जो दीदी हमें खूब बहलाती थीं और हम अपने अनुभव से दीदी जी को भी खूब बहलाते थे। तो जैसे भगवान के चरित्रों को सुनने और सुनाने का शौक था, तो दीदी जी के संग संग जैसे रही तो बाबा की बातें सुनने और जो हमारे अनुभव में बातें आती थीं उनके आगे हम रखते रहे। हैदराबाद सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म हुआ और एक धनी दानी घराने में हुआ और नाम बड़ा अच्छा था, गुणवाचक नाम गोपी था और गोपियां होती हैं कृष्ण की प्यारी। तो जैसा नाम था वैसे ही उसके जीवन में ये चाहना थी कि कृष्ण की गोपियां कैसी थी और वो कैसे कृष्ण के साथ में रास रचाती थी। तो जैसे गोपी के नाम से गोपीपने के संस्कार भी जागृत थे। उन्होंने स्वयं भी अपने मुख से हमें बताया कि मैं श्री कृष्ण की भक्तन थी और दिल में बहुत चाहना थी। तो जैसी गोपियां की जीवन थी वैसी मेरी भी जीवन रही। परंतु ड्रामा में जो बात होती है वो समय पर इमर्ज होती है। तो क्या हुआ कि हैदराबाद में बाल्यावस्था में उनकी शादी हो गई थी, जबकि छोटी थी, 10 बरस की आयु में थी। शादी के बाद जब बड़ी हुई, 18-19 वर्ष की होंगी, शायद हो सकता है इससे अधिक भी हो क्योंकि आयु तो कुछ ही नहीं। तो क्या था कि फिर बाबा ने अपने लौकिक बेटे की शादी कराई। तो उस समय शादियों की सीजन होती है, कपड़े वगैरह कोई सिलाई नहीं करके देते है टाइम पर। तो बाबा को मालूम था कि ये जो गोपी है ये सिलाई करने में बहुत अच्छी, बहुत होशियार थी, हाथ की सफाई थी और वैसे बड़े घर में थी तो इसको वास्तव में मशीन चलाने की दरकार नहीं थी, क्योंकि लौकिक में जहाँ शादी की वो भी अच्छा आदमी था, बहुत पैसे वाला था। लेकिन वो चाहती थी कि जितना मैं पैसा अधिक कमाऊंगी उतना मैं गरीबों को दान करूंगी। और इस प्रकार की अपनी मेहनत का पैसा कमा करके दान करना, उसका जो फल मिलता है वो अच्छा होता है। इसलिए वो कहती थी मैं उस रुचि से धन कमाती थी और खूब अच्छे बड़े बड़े घर वाले इसको देते थे। तो कहा एक दिन बाबा को जरूरत पड़ी। तो बाबा को मालूम था कि क्वीन मदर है उसकी जो है ये जानती हैं। तो बाबा का बड़ा बेटा था ना मानो ब्रज, उसकी शादी होने वाली थी। तो उसके सारे जो कपड़े थे ना वो दीदी ने सिलाई किए और दीदी ने प्यार से कहा कि मैं इस मौके पर आपको दे दूंगी। तो जसोता को खातरी हो गई कि शादी परसों है, ये हमको 2 दिन के अंदर वस्त्र तैयार करके दे दें। तो समझो उस नाते से थोड़ा बाबा के घर में आने जाने का कनेक्शन जारी रहा। खैर परंतु फिर भी घराना इनको टोटली अच्छा लगता था क्योंकि भक्ति का बहुत प्रभाव था। और स्वभाव में बाबा के घर में धन तो था परंतु धन के साथ साथ भक्ति और निर्माणता का गुण था। बाबा एक छोटे से मकान में बैठा हुआ था और गीता का ज्ञान रियली चल रहा था। तो कहती मैं भी अपनी माता जी के साथ में गई जो दीदी ने सुनाया है। ऐसे बाबा बोल मेरा सत्संग पूरा हुआ तो आनंद बहुत आया क्योंकि मैं उसमें मगन थी। तो जब बाबा उठा नहीं तो बाबा को पता था ये बच्ची आई है, तो बाबा ने पास बुलाया। तो पास बुला करके कहा बच्ची तुमने सुना, तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा जैसे पूछा जाता है। तो कहा हाँ ज्ञान तो अच्छा लगा। तो बाबा तो कहा बाबा वैसे तो लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि हिंदू नारी को गुरु करने की दरकार नहीं है क्योंकि पति ही परमेश्वर है, पति ही गुरु है। तो इस भावना से जैसे दिखलाती थी कि भैया आपको मैं गुरु बनाऊं, बाबा ने सिर्फ यही पूछा तो उससे उसने सोचा कि शायद ये कहता अभी तुम मेरी वो बनो और गुरु दक्षिणा जैसे होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची मैंने तो कहा ही नहीं कि किसी को गुरु बनाना है। और बच्ची यहाँ गुरु बनाने की तो बात ही नहीं है, ये तो ज्ञान है और ज्ञान से ऐसी जिंदगी बनती है। तो बच्ची अगर तुम रोज आएंगी, साधन का कोर्स है, थोड़ा थोड़ा सुनेंगी तो तुम्हारी जीवन बहुत ऊंची बन जाएंगी। तो कहा जब बाबा ने ये कहा ना तब समझो मुझे लगा कि भाई पति परमेश्वर जो गुरु है वो तो रहेगा ही, बाकी यहाँ आना है सिर्फ ज्ञान वगैरह सुनना है क्योंकि पति से भी प्यार था। तो फिर ये ज्ञान सुनती रही, पर ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठी। फिर जब जब बाबा को देखती थी ना, देखते देखते उनको बाबा के साकार स्वरूप से भी श्री कृष्ण की वासना आती थी। कहती थी मैं ट्रांस में भी नहीं जाती थी, परंतु एकदम से मेरे को पक्का भान हो गया कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। बाबा उधर जाए, बस मेरे दुनिया के सब सुख अपने आप छूटते गए। एक भगवान की आकर्षण मेरे को पकड़ के खड़ी रही। घर में जाती हूँ फिर चैन नहीं आता है, बस बाबा के पास जाऊं। अब थोड़े समय के बाद बाबा कश्मीर में चले गए। कश्मीर में गए तो फिर कश्मीर से पत्र वगैरह आए। जब पत्र आती रहे ना, तो पत्रों को पढ़ पढ़ करके ये गोपी रोती रहती थी कि बाबा कब आएंगे। अब इतना दिन हुआ, पत्रों को प्यार करती थी, पत्रों को छिपा के रखती थी, और जैसे भी कोई सखी आई सहेली उसको पत्र दिखाती को बाबा ने कैसे पत्र लिखा है। तो बाबा के पत्र में एक रूहानी प्यार भरा हुआ है, चंद शब्दों में बहुत सुंदर पत्र है। पर इसको तो समझे प्यार हो गया ना बाप से, तो फिर उनके हर वस्तु से प्यार। कहा बाबा पति कहता है तुम मेरे साथ सिनेमा में चलो। तो मैं जाऊं क्या करूं? बाबा ने कहा जाना पड़े बच्ची, तुम बैठी रहना, तुम बाबा को याद कर। मानो उस समय में बाबा ने क्या कहा वो मुझे याद नहीं है, अभी तो मेरे मुंह से बाबा ही निकलेगा। तो तुम अपनी मस्ती में रहना, उस समय हम पता नहीं क्या क्या शब्द होते, शांत समाधि में रहना, ओम की उस मस्ती में रहना, निज स्वरूप में टिके रहना, ऐसे ऐसे शब्द थे। तो बाबा ने कुछ उसको बोला तो इसने कहा ठीक है, पर पति को खुश करना, ऐसे नहीं कि बच्ची बड़े घर की हो, झगड़ा हो जाए तो सारी कन्या माताएं बंद हो जाएंगी। तुम निमित्त हो, तुम बड़ी हो, तुम ऐसा कर्म पहले नहीं करना, पर युक्ति से चलती रहना। तो एक दिन बात में पति को बड़ा गुस्सा आया, तो कभी भी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन एक दिन ऐसा उसको गुस्सा आया तो गुस्से में थोड़ा हाथ लगाया। जब हाथ लगाया तो उसका चश्मा गिर गया और शीशा टूटा, तो उसको बहाना मिल गया। तो उसने सब और थोड़ा वो किया, कहा देखो आप तो मेरे को विकारों के कारण मारते हो, यानी आपको विकार प्यारे हैं या मैं प्यारी हूँ? अगर ऐसा है तो आप भले मेरे को छोड़ दो। कि जैसे इसके अंदर जो संस्कार थे ना, वो बड़े वंडरफुल संस्कार थे। मैंने घर में शादी तो की छोटेपन में, परंतु जैसे बड़ी भी तो उसके पिताजी का जब देहांत हुआ ना, तो उसकी बुद्धि बहुत तेज थी इसके पिताजी की। उसका देहांत हुआ और क्वीन मदर कहती है वो सारी बुद्धि इसको मिल गई, इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण। तो समझो हमारे सेंटर में जब ओमन लीग खुली, तो उसमें जब ये आने लगी ना, तो सब में इसका अगवानी का पार्ट था जैसे लीडर। और बाबा जब समर्पण हुए तो उसमें भी इसका नाम था। समर्पण होने के बाद हम कन्या माताएं आई तो हमको पढ़ना चाहिए, और हम लोगों को भी शादी के ऊपर बंधन पड़ता था, तो हम कहते थे कुछ ऐसा कुछ बने जो हमको यहाँ पनाह मिले। तो हम बहाने को बहाने इधर आते जाते रहे। तो दीदी ने कहा ठीक है बाबा के डायरेक्शन से कि बाबा मैं स्विंग जानती हूँ, सिलाई जानती हूँ, तो मैं 8-10 मशीनें लेकर के ना बाबा के घर में ओमंडी के स्थान पर 8-10 मशीनें रख करके, वो लीडर थी, और 2-3 ऐसी सखियों को इकट्ठा किया, भाई जो भी ऐसी बंदेली कुमारियां हैं जिनको माँ बाप शादी के लिए तंग करते हैं, तो उनको यहाँ बाबा का बनाने के लिए हम उनको स्विंग के हिसाब से बुलाएंगे। भाई किसको भी स्विंग सीखने हो तो यहाँ आ सकते हैं। तो उसमें मैं भी सीखने के लिए गई। तो आज स्कूल में ये सिखाती थी और योग लगा रहे हैं, शांत समाधि में बैठे हुए हैं, ध्यान में चले गए हैं, फिर रास रचा रहे हैं, फिर बाबा आ गया है, फिर मम्मा आ गई है, मानो क्लास स्विंग का है, पर बीच में ये सब रास उलास हो रहे हैं। मंडली के बाद हमारा ओम नवास खुला, तो ओम नवास में कुमारियां बच्चे बच्चे सब रहने लगे पालना पोषना का। तो ये ओम मंडली के कन्याओं को माताओं को जो जो बड़े बड़े घर वाले आते थे, तो जैसे सत्संग में अगवान होने के कारण सब उनको देख करके फॉलो कर। फिर कराची में कुछ समय जब बाद में हम भी बड़े हुए, समझदार हुए, क्लास खुलाए, ये हुआ वो हुआ, तो दीदी बनी कंट्रोलर और मैं बनी वाइस कंट्रोलर। तो दीदी ऐसी तेज और इतनी एक्यूरेट और उनकी स्मृति बड़ी पावरफुल और हर बात मानो सिलाई में होशियार थी, हर कारोबार एक्यूरेट रहे उसमें अच्छी थी, और सारे यज्ञ का पूरा प्लान, कपड़ा देने का, फैंसी सामान, ये वो, मतलब जो भी यज्ञ की पूरी कारोबार इनके हाथ में, पर उनके साथ में 8-10 और थी, और हर राय इसकी चलती थी। मम्मा कुमारी थी, ये अनुभवी थी, माता थी, तो बाबा मम्मा को भी कहता है मम्मा ये जो बच्चे ने इनसे हर एक कार्य में राय लेके इसको आगे लगा देना। तो मम्मा भी कोई काम करती थी तो दीदी आपका फिर इसमें क्या विचार है, कैसा होना चाहिए, फिर आपकी क्या राय है, फिर जब दीदी राय मिलाएंगी कि हाँ मामा ऐसा हो सकता है, मानो काम लग गया, मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके कराची में काफी समय ये और हम रहे, लेकिन उसमें हम क्या क्या सीखे कि जो भी काम करना है दीदी पहले करती थी फिर हमसे कराती थी, कोई काम करना है पहले खुद करती थी तब दूसरों से करवाती थी। ये मन उनकी विशेषता थी कि जो कहना है वो करना है, और करके अपने कर्म से सिखाती थी हर एक बात। यानी योग का चार्ट देखो, यज्ञ की सेवाएं देखो, यज्ञ का काम एक्यूरेट होना चाहिए, सफाई में बहुत अच्छी थी, हाथ की सफाई बहुत अच्छी थी, इसलिए उनके संग में रह करके ये सब बातें हम अच्छी तरह से सीखे। फिर उसके बाद हम आए माउंट आबू में। तो माउंट आबू में हमारा कैसे आना हुआ, वो भी उसमें भी इसका पार्ट था कि बाबा निमंत्रण आ रहा था कि भाई आप सब पाकिस्तान हो गए हैं, वहां आपकी सेवाएं नहीं चलेंगी, इसलिए आप लोग सब इधर आ जाओ। तो इनकी जो लौकिक में पेरेंट्स थे वो इनको बार बार लिखते रहते थे कि साहब तुम लोग आओ। ये कहती है ये हो ही नहीं सकता कि हम छह घर के मेंबर वहां आए, हमारी ये जॉइंट फैमिली है, आएंगे तो सब आएंगे नहीं तो एक भी नहीं आएगा। तो उन लोगों का मुंह तो इनमें था, इन सब में, पर ये इसने साफ लिख करके दिया अगर निमंत्रण देते हो बुलाना चाहते हो तो समझो सारा ईश्वरी विश्वविद्यालय आएगा। फिर लोकोमल जो चाचा जस लोक हॉस्पिटल जिनकी है, तो उस चाचे ने उनको एक दो बार लिखा कि देखो मुझे ऐसा ज्ञान दो और मुझे ऐसा, जैसे ना उसने किसका मिसाल देते हैं जनक का। फिर बाबा ने दीदी को कहा दीदी देखो तुम्हारी लौकिक भाभी कमला जो आज जागी है तो उसको तुम, उसने भी लिख करके भेजा है, तुम जाओ और भले तुम बंगला देखो। तो ये सोचती थी कि इतने बड़े ईश्वरी विश्वविद्यालय को मैं मकान दूं, देखूं मैं खुद पसंद करूं, ये कैसे होगा। बाबा ने कहा नहीं बच्ची तुमको जाना पड़ेगा, तुम जाकर के देखो और मकान पास करो, फिर तुम लिख करके भेजना, फिर मैं बच्चों को लेकर के आऊंगा। तो ये आई तो इसने दो चार शहरों में, बड़े बड़े शहरों में मकान देखा, पुणे में देखा और भी कई स्थान थे मुझे याद नहीं है। तो अहमदाबाद में गई तो जो इनके लौकिक घराने का गुरु था गंगेश्वर, उन्होंने उनको राय दी कि आपको बाबा कहता है पहाड़ों पर होना चाहिए, पहाड़ों पर तो ये आबू पर्वत बहुत अच्छा है। तो उसने ये आबू की राय दी और उस आधार से दीदी आबू में आई अपने लौकिक संबंधियों के साथ में। यहाँ आकर के देखा तो कहती है बहुत बड़े बड़े बंगले देखे लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा था इतने बड़े विद्यालय के लिए। तो रास्ते हम जा रहे हैं अभी भाई नहीं मिल रहा है, तो रास्ते चलते एक भाई मिला कोई ऐसा जैसा होता है, तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया। तो उन्होंने कहा हाँ एक बंगला है खाली वो यहाँ है, बस वहां लेके गए और सारा बंगला देखा है। बंगला देखा तो इसको बंगला बहुत बड़ा नजर आया क्योंकि राजाओं का बंगला था, काफी साल हम उसमें रहे। तो उसमें एक दिन क्या हुआ, तो दो साल हुआ वो बीच में हमारे यज्ञ की हिस्ट्री में आपको पता है कि बेगरी पाठ चला 14 साल के बाद। तो और बाबा की एक बात विशेष बताती हूँ, आप सबके भी ध्यान में नहीं होंगी कि शुरू शुरू में मुझे याद है कि हम जब घर से निकले और बाबा के पास रहे तो हमारे पेरेंट्स पूछते थे आखिर तुम्हारी इतनी कन्या माताएं भाग गई वहां जाके रही हो, विद्या प्राप्त कर रही हो, कुछ सीख रहे हो, तो आखिर हमको कब आके सिखाएंगे, हमारे पास कब लौट करके आएंगे। तो बाबा शुरू शुरू में कहता था कि बच्ची तुम उनको कहो कि हमारा 14 साल का वो है यानी कोर्स है मनुष्य से देवता बनने का, वो कोर्स पूरा करके फिर हम आएंगे। तो हम भी अपना जैसे बाबा ने बोला हम तो विश्वास में चलते थे, जैसे बाबा ने बोला वैसे हम लोग, क्योंकि हम 14 साल के हमारा कोर्स है वो पूरा करके हम आएंगे। अब ये सचमुच 14 साल हमारे माउंट आबू में आके पूरा होते थे, जब पूरा हुआ और हमारा बेगरी पार शुरू हुआ। अब न चाहते हुए भी हमको यज्ञ के लिए प्यार है और इतनी जो पालना ली तो उसका अंदर रग रग में था कि इसका रिटर्न हम कब देंगे कैसे देंगे। पहले तो हम समझते थे यहीं रहना है यहीं मरना है, जीना मरना सब यहीं है, यहाँ से कहीं भी नहीं जाना है। परंतु बाबा कराची में कहता था लिख करके लाओ तो राजाओं को कैसे जीतेंगे, लेख लिख करके लाओ, संन्यासों को कैसे जीतेंगे, फलाने कॉलेज में जाएंगे वहां भाषण कैसे करेंगे, फलाने जगह जाएंगे वहां कैसे करेंगे। तो हम कहते बाबा हमारी बुद्धि को चलाने के लिए ये प्लान देता रहते, कहां सन्यासी हम जानते भी नहीं है तो सन्यासियों को कैसे जीतेंगे क्या होगा, मानो हमारे बुद्धि में ये प्लान ही नहीं था सर्विस का। और बाबा हमसे लिखवाता रहता था ताकि इनकी बुद्धि रहे, बिजी रहे इन बातों में, और प्लान अच्छा अच्छा बना करके भी आते थे। हम जाएंगे राजा को ऐसे बोलेंगे, उनको ये बोलेंगे, पॉइंट्स भी बाबा से अच्छी अच्छी मिलती थी। خیر جب ماؤنٹ آبو میں آئے, اب وہ جو کراچی میں بابا نے ہم سے یہ کرائے نا, وہ سارا ہم کو ماؤنٹ آبو میں کام میں آئے. اس میں دیدی کا کیسا ساتھ رہا. تو بیگری پارٹ تھا, بابا وار وار ہم گیان گنگاؤں کو دیکھیں, کہ یہ بچی تم کو آواز نہیں آتا ہے. ہم سب بیٹھے ہیں بابا کے سامنے, نزدیک تھے نا بابا کے, اور دیدی ہم کو بابا کے سمیپ بہت لے آئی. ہمارا کنیکشن دیدی کا, دیدی کے ساتھ دیدی کا کنیکشن بابا کے ساتھ, تو ضرور بات بات کرتے بابا کے پاس چلے جاتے تھے. انیک باتیں یہ بابا سے کرتی ہیں, بابا ان کو جواب دیتا ہے اور ہم بچے سیکھتے رہتے ہیں. تو ہم بابا کے سمیپ آ گئے. جیسے دیدی ہلکی ہو کے بابا سے بات کرتی تھی نا, جیسے بھگوان کو بھی باپ بنا دیا, بھگوان کو سکھا بنا دیا, متر بنا دیا. تو جیسے جیسے ہنستی تھی بہلتی تھی, ہماری ممی وہ سنسکار پل گئے تھے. تو بابا نے کہا بچی ایسی دنیا آپ کو پکار رہی ہے, دنیا آپ کو یاد کر رہی ہے, اور آپ یہاں بیٹھی ہو, آپ کو یہ سنکلپ نہیں آتا ہے کہ ایسے جو ہماری غریب بھائی بہن ہیں, جو بالکل بھکاری ہیں, پتت ہیں, ان کو جا کر کے ہم پاون بنائیں, تو ایسا کبھی سنکلپ نہیں آتا ہے. تو ہم نے کہا روز روز بابا کہتے ہیں, تو ہم نے دیدی کو پکڑا, دیدی آج میٹنگ کرو. جیسے آپس میں بیٹھ کے کانفرنس کرتے نا, تو ہم چاروں نے میٹنگ کی برج بھون کی کوٹھی میں. تو ہم نے بہت گہرائی سے سوچا کہ بابا کی اس پریرنا میں کیا بھرا ہوا ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں, دنیا کو دیکھا نہیں, منشوں کو جانتے نہیں, ٹرینر کو جانتے نہیں, سکے بدل گئے, زمانہ بدل گیا, بابا روز روز ہمارا نام لیتے ہیں. دیدی آپ بتاؤ ہم کس طرح سے بابا کی آش کو پورن کریں. تو پھر پلان بناتے بناتے, رتن منی بھی تھی, میں چار جنے تھے, تو پلان بنا کے سب سے پہلے جس کے بھی سمندھی دہلی کے اندر ہو نا, تو پہلے دہلی کے اندر جائیں اور سمندھیوں کا نمنتن لیں, اور نمنتن پر جا کر کے پھر ہم سیوا کریں گے, مندروں میں جائیں گے, جو جو پلان کراچی میں بنا نا وہ وہاں کام میں لائیں. دیدی ایسے تو میرے رشتے دار ہے دلی کے اندر, تو کہا بس ان کو تم چٹھی ڈال دو, تم چٹھی بابا کو بتا دیں گے پلان, تم چٹھی ڈالو, ان کا نمنتن آوے پھر بابا کو تم کہنا کہ بابا نمنتن آئے, ہم جاتے ان کی سیوا کرنے. تو ہمارے کو نا پاور فل نمنتن آ گیا, تو ٹرین میں کیا کیا گیان دینا شروع کر دیا. جب سیوا کرنے جاتے تھے تو وہ کہتی تم دونوں بھاشن کرنے میں اچھی ہو نا, تم جاؤ, میں گھر میں بیٹھی ہوں. اور جب ہم سیوا کر کے لوٹتے تھے, سارے بھنڈارے کی صفائی, سارے گھر کی صفائی بالکل ایکوریٹ, گھر آؤ تو جیسے مندر بنا, چھوٹی سی جھوپڑی تبھی بھی سجی ہوئی رہے گی. ایسے کافی سمے ہمارا مانو دلی کے اندر بیتا. پھر دیدی الگ ہو گئی, ہم دلی کے اندر رہے, دیدی اللہ کی الہ آباد میں ادھر بڑے سادھو سنت مہاتما کی گنگا کے ساتھ مل کر کے اس نے کافی سیوا کی وہ ٹائم. لیکن دیدی کی یہ سب وشیشتا, سب سے پہلے دیدی نمبر ون اسٹوڈنٹ تھی, کیونکہ کمپلیٹ فالو کیا. جیسے بابا سپریم ٹیچر, تیسے بابا اسٹوڈنٹ بھی نمبر ون. ٹائم پر رہنا, پڑھائی کو پڑھنا, پوائنٹس نوٹ کرنا, تو دیدی کے اندر پوائنٹس نوٹ کرنے کا سنسکار, کلاس میں ٹائم پر آنا ہے اس بات پر دھیان, اور بابا جو کہے وہ کرنا ہے. سری مت پر چلنے کی بہت بڑی شکتی تھی اس کے اندر. ساری لائف ہم دیکھتے ہیں کہ سری مت پر قدم قدم پر چلی ہے. اور دوسرا نشچے کا فاؤنڈیشن بہت گہرا, کوئی ہلا نہ سکے. تیسری بات کہ سرینڈر, تو کمپلیٹ سرینڈر. پھر اس کے سرینڈر کے بعد اس کو لائف میں کبھی بھی لوکی گھر کی, دھن کی, دولت کی یہ آکرشن نہیں ہے. بس ہر ایک کو سکھی بنائے, یہ تو دیدی کی وشیشتا تھی. جو آئیں گے تم تو میری سکھی ہو, چھوٹی بچی بھی آئے گی تو میری سکھی ہو, کوئی باندھ لیں گے تو میری سکھی ہو. سکھی بنا کر کے اسے باتیں جیتے کر کے اس کے دل کو جیت لیتی تھی. تو اس طرح سے دیدی نے چھوٹے یعنی بچپن والی ایج والی جو چھوٹی چھوٹی ہے نا, ان سے بھی جب بات کریں گی ان کو بھی فرض سے سکھی کہیں گی, ہمارے جیسے کو بھی سکھی بنائیں گی, اپنے جیسے اپنے سے بڑے بڑے ہیں ان کو بھی اس پرکار سے. تو یہ بھاشنا بھی ایک وشیش رہی. اور دوسری جو دیدی کی وشیشتائیں تھیں وہ یہ تھی کہ ہر ایک بات کا گڑ اٹھانا. سمجھو کسی نے بھاشن اچھا کیا تو فٹ سے دھیان جائے گا, دیکھا اس نے بھاشن کتنا اچھا کیا. اس کے بھاشن میں یہ وشیشتا تھی. سمجھو کسی نے کام اچھا کیا تو اس کا گڑ اٹھائیں گے, کہیں گے دیکھو اس نے کیسا یہ کام کتنا اچھا کیا, تو اس کا اتساہ بنائیں گے, اس کو آفرین دے دیں گے. اور یہ ہم لوگ دیکھتے تھے, سیکھتے تھے کہ دیکھو دیدی نے اس چھوٹی بچی کا یہ اچھا کام دیکھا تو اس کو ایک دم لفٹ دے دی. چاہے بھائی ہو, چاہے کوئی بھی یگ کی سیوا انیک پرکار کی ہوتی ہیں, تو پالنا میں پورا پورا پارٹ رہا. اس لیے یہ سب باتیں گڑ چور تھی, ہم یہ نوٹ کرتے تھے. اور لکھنے میں, لکھنے کی کلا اتنی اچھی جو آج لاسٹ مومنٹ تک بھی دیکھو, لاسٹ میں بھی کلاس میں آئی ہے کاپی, چشمہ, पेन इसके साथ साथ है और दो चार पॉइंट नोट कर लेती है और पॉइंट का प्रश्न बना लेती है, फिर हम लोगों से प्रश्न उत्तर करती है, खेलती है। फिर शाम के समय रोज अपने कमरे में एक बहन को कहेंगी कि सिंधी में जो आज प्रश्न उत्तर निकले ना वो मेरे को सुनो। फिर वो बुद्धि में रख करके फिर जो पार्टी आएंगी उनको उससे बहलाएंगी, ज्ञान रत्न से बहलाएंगी। यहाँ तक कि सौगात देने की जो विशेषता थी वो इतनी वंडरफुल हमने देखी कि हमारे पास ऐसी अभी कोई ऐसी बहन नहीं है जिसके अंदर इस प्रकार की पालना का है। यानी हर वक्त बच्चे आते ही रहते हैं और फिर सौगात दो, प्यार से दो, बाबा की याद से दो, दो वचन भी बोलो, तो दीदी ने बहुत प्यार से ये डिपार्टमेंट संभाली। हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से बहलाना, सौगात देना, इतने तक कि डायरी पेंसिल देंगी ना तो स्लोगन खोल खोल के देंगी, देखो इसमें क्या है, चार स्लोगन जरूर सबको सुनाएंगे। ज्ञान युक्त सौगात ज्ञान दे करके दे देंगे, डायरी खुलवाएंगे, तुम्हारे को क्या मिला प्रेरणा, अच्छा नोट करो तारीख का। तो ये विशेषता है ना, तो एक ये विशेषता। और दूसरी दादी जो हम देखते थे ना नस्तिक में, कोई बात हो जाती थी फट से अपनी भूल कुछ हो जाए तो छोटे के आगे भी माफी लेने में हिचकती नहीं थी, दो भाई आप इस बात को भूल जाना, मैंने इस भाव से कहा पर मैंने देखा आपको थोड़ा फील हुआ तो आप इस बात को भूल जाना। तो एक सच्चाई सफाई हो, श्रीमत हो, सर्व संबंध एक के साथ, ये एक विशेष बात थी, आदि से अंत तक सर्व संबंध एक के साथ, निश्चय का फाउंडेशन पक्का, गुणग्राही वृत्ति और संपूर्ण बनने की चाह। बस अभी दो साल तो मन एकदम उपराम था, हर वक्त जो आता था अब तो घर चलना है, ये मकान बन रहा है, ये बन रहा है, दीदी का मन उपराम था, ये बाबा के बच्चों के लिए बन रहा है, अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई बात मैं ऊंची ऊंची बताऊंगी, अब तो दीदी पढ़ते खेता का देखो ये हो रहा है, वो कहेंगे अब तो घर चलना है ना, अब तो घर चलना है। तो घर जाने की धुन, योग का चार्ट एक्यूरेट, बीमार है सीमार है मुझे कहेंगी मनोहर आज मेरी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर है, मैं आऊंगी जरूर पर तुम भी ध्यान रखना, अगर मैं इत्तफाक से ना आ सकूं तो तुम जरूर तख्त पर बैठो। तो ये जो विशेषताएं हैं हम अपने में देते हैं वे उस प्रकार की विशेषताएं नहीं है, लेकिन आज जब दीदी अव्यक्त हुई तो जैसे एक रिपीट करने से लगा ये तो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। अभी हम बच्चों को सबको ये विशेषताएं जीवन में भर करके हर एक आत्मा की पालना ऐसे होनी चाहिए ना, तो उससे अनेक आत्माओं को अनेक प्रकार की प्रेरणा मिली, जिसका फल तो हम सबने देखा कि दीदी का सुनते सब कैसे दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। अभी ओम शांति करती हूँ।
शांति सागर ने तुम्हें, शांति सागर ने तुम्हें सागर बना दिया, प्रेम दीप ने तुझको, प्रेम दीप ने तुझको ज्योति घर बुला लिया। बाबा बाबा रटने वाली, बाबा बाबा रटते मन को, बाबा में बसा लिया। शांति सागर ने तुम्हें सागर बना दिया, छोड़ के देह के बंधन बाबा साथी बना लिया। शांति सागर ने तुम्हें सागर बना लिया, पर ये तो बताओ मन को मोहने वाली दीदी, ओ मीठी दीदी मीठे मधुबन वाली, एक नजर से उड़ाने वाली, वतन की सैर कराने वाली, फिर मिलेंगे कब हम तुझसे, फिर मिलेंगे कब हम तुझसे, पाएंगे माँ का प्यार तुझसे, ये तो बता जरा। शांति सागर ने तुझे सागर बना दिया। पाएगा परिवार कब, दोनों ताज दादी दीदी, शक नहीं कि इसमें तू रहेगी सदा मधुबन में ही। हर मधुबन निवासी के, हर ब्राह्मण के दिल में ही खुशबू तेरे गुणों की रहेगी सदा मधुबन में ही। देखते रहेंगे तुझको हम तो सदा सदा, देखा तुझको हमने मधुबन में सदा। मुबारक तुझको यही लाखों बार, वतन की संपन्न फरिश्तों का सेवा का बाबा का साथ, मिलोगी हमको तारों से पार, देख रही हो हमको आप ऊपर से बाबा के साथ, मिलना चाहे साकार में सभी दीदी दिल से सुन लो आज। बाबा बाबा रटते मन में बाबा बसा लिया, शांति सागर ने तुझे सागर बना लिया, प्रेम दीप ने तुझको ज्योति घर बुला लिया। बाबा बाबा रटने वाली, बाबा बाबा रटते मन में बाबा बसा लिया, छोड़ के देह के बंधन बाबा अपना बना लिया।